शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमने जब खुद को पहचानने की बात की, आत्मा के उस स्वरूप को जाना जो हमारा अपना असली स्वरूप है, उसके बाद हमने परमात्मा के साथ एक रिश्ता कायम किया। उसके लिए पहले जरूरी था कि परमात्मा को पहचाने, और वो तब तक नहीं हो सकता था जब तक परमात्मा ने स्वयं यह ज्ञान नहीं दिया। इस ज्ञान के चलते परमात्मा की पहचान हुई, उनके साथ अपने रिश्तों के बारे में भी जाना। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आपके पास हैं, और उन्हीं सवालों को लेकर आज फिर हम आपके साथ हैं और हम इन सवालों का जवाब मिलकर तलाशते हैं। हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमार सिस्टर शीलू बहन, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।
शीलू बहन, अगर हम आत्मा के एस्पेक्ट को देखें, उस पर तो हमारे पास बहुत से लोगों के सवाल आए थे, लेकिन आज हम परमात्मा से जुड़े हुए भी बहुत सी बातें, क्योंकि जब राजयोग की बात करते हैं तो तीन फैक्टर्स उनके भी हैं, अपनी पहचान, परमात्मा की पहचान, और फिर समय का सही सच जो है। तो एक यहाँ सवाल मैं लेना चाहती हूँ, ये कह रहे हैं कि यू आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग अ रिलेशनशिप विद गॉड, विच वी ऑल बीन टॉकिंग अबाउट दैट वी कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद हिम। आई वॉन्टेड टू आस्क दैट talking to yourself and getting things explored by asking questions to yourself and then sometimes getting answers is same as talking to Paramatma. अपने सभी दर्शकों के साथ भी यही शेयर करना चाहेंगे। शायद बहुत से लोगों के मन में शीलू बहन यही बात आती है कि जब हम परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ने की बात करते हैं, जब हम मेडिटेशन में उनसे बात करने की बात करते हैं, तो क्या हम उनसे सच में ही बात कर रहे हैं, या जब कभी कभी हम अपने आप से जो बात कर रहे होते हैं वो ही परमात्मा से बात करना है, यहाँ कंफ्यूजन रह जाता है।
जब हम राजयोग की बात करते हैं ना, तो राजयोग में जो पहली स्टेज है उसमें अपने आप से बातें करनी होती है, जिसको हम इनिशिएशन कहते हैं। हम आरंभ करते हैं स्वयं से, क्योंकि जब तक आत्मिक स्थिति नहीं है तब तक परमात्मा में भी मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए राजयोग में पहला कदम है आत्मिक अनुभूति, और उस आत्मिक अनुभूति में स्वयं से बातें करनी होती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, आदि आदि। और फिर दूसरी स्टेज है मेडिटेशन, जिस मेडिटेशन में हम परमात्मा से बातें करते हैं। तो इसीलिए आत्मा को पहचानना, फिर परमात्मा को पहचानना, आत्मा से बातें करना खुद से, फिर परमात्मा से बातें करना, ये राजयोग के अंतर्गत आता है।
अगर हम आत्मिक स्थिति में नहीं होंगे शुरू में, अगर हम उस स्टेज में नहीं पहुंचे हुए होंगे, हम परमात्मा के साथ योग नहीं लगा पाते। कई बार ऐसा होता है कि हमारा योग नहीं ठीक लग रहा होता, क्योंकि कई सारी चीजें हमें डिस्टर्ब कर रही होती है।
इसीलिए कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। विदाउट सेल्फ रियलाइजेशन यू कांट इवन रियलाइज गॉड। तो सेल्फ को रियलाइज करना माना पहले अपने आप से बात करना, फिर परमात्मा से बात करना, उसमें हम परमात्मा को रियलाइज करते हैं। तो हम राजयोग में चार स्टेजेस बताते हैं, इनिशिएशन, मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड रियलाइजेशन।
रियलाइजेशन मीन्स अनुभव जब होने शुरू हो जाते हैं।
तो फिर अनुभूति तब होगी, पहले हम चिंतन करेंगे। तो इनिशिएशन में चिंतन अपने बारे में करते हैं, चाहे परमात्मा के बारे में भी करते हैं, तो मन में सोच चलता है कि आखिर मैं किसकी संतान हूँ, परमात्मा कौन है, फिर उसका उत्तर हम खुद ही ढूंढते हैं अपने अंदर, और फिर परमात्मा से बातें करते हैं, वो मेडिटेशन। फिर उसके बाद परमात्मा के गुणों में हम खो जाते हैं, वो है कॉन्सेंट्रेशन, और फिर उसको अनुभव करते हैं, वो रियलाइजेशन।
तो हमें खुद को देखना है कि हम किस स्टेज पर पहुंचे हैं
जी,
कि हम पहुंचे कहां तक पहुंच चुके हैं। एक और यहां पर मैं क्वेश्चन देना चाहूंगी कि आई वॉन्ट टू आस्क हाउ टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा एंड परमात्मा टू अ चाइल्ड। ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को, और सबसे बड़ी बात है बच्चे को ऑलरेडी वो जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम तक भी है वो इन्फॉर्मेशन, लेकिन आज की जनरेशन में जो बच्चों को गॉड के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो टेलीविजन के माध्यम से या कार्टून के माध्यम से बहुत ही डिफरेंट तरीके से उन तक पहुंचे हुए हैं।
नहीं, हम बच्चों को भी आत्मा परमात्मा का बहुत सुंदर रूप से ज्ञान देते हैं। हम बच्चों को बताते कि देखो तुम एक आत्मा हो, तुम भ्रकुटी के मध्य चमकने वाला एक सितारा हो, एक बिंदु हो, तुम शांत स्वरूप हो, तो कौन हो, फिर वो कविता में बोलते हैं मैं हूँ आत्मा, तुम हो आत्मा, हम आत्मा, भाई भाई, ऐसे कविताएं सिखाते हैं बच्चों को। बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे जब ऐसी कविता आत्मा के बारे में सुनाते हैं या परमात्मा के बारे में भी सुनाते हैं। परमात्मा शिव बाबा है, वो परम धाम का निवासी है, वो मुझ आत्मा का परम पिता है, ऐसे कविता बनाते हैं और कविता के रूप में जब वो सुनते हैं और फिर बाई हार्ट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे बच्चों को सिंपल वे में समझाते हैं।
लेकिन एक बात यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि उनको बताया जा सकता है मैक्सिमम लोगों के। इवन मेरे पास भी ये थॉट था कि क्या मैं 9 साल के बच्चे को ये समझा सकती हूँ कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ
जी,
और क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा, शुरू में कंफ्यूज होता है जरूर, क्योंकि वो हम भी तो हुए हैं कंफ्यूज।
नहीं, शुरू में हो सकता है, लेकिन क्या है बच्चे को और ही जब हम सिखाते तो जल्दी सीख जाते हैं। बड़ों को सिखाना और ही मुश्किल होता है क्योंकि हाँ रिजिडिटी आ जाती है और वो बहुत कुछ और बातें उनके दिमाग में होती है, और बच्चा तो जैसे कोमल पोढ़े की तरह है, उनको जो सिखाओ वो सीख लेता है और तुरंत सीख लेगा मैं एक आत्मा हूँ। फिर उनसे पूछो कि आप किसके बच्चे हो, कहेंगे शिव बाबा तुरंत। फिर उनसे पूछो आप कहाँ के रहने वाले, कहेंगे परम धाम, सीधा बता देंगे। तो बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं
और बच्चों को बताया जा सकता है। यू नो एट टाइम्स पेरेंट्स हैव दिस ब्लॉकेज कहीं पे कि क्या ये बच्चों को बताई जाए, ये जानकारी दी जानी चाहिए। सो ये शिरू बहन एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट क्लियर कर
ले, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। और ही बच्चों को हम यही सिखाते, तुम्हारा ये शरीर का नाम है, तुम्हारा ये पिता है, ये तुम्हारा घर है, आदि आदि, वो तो भले सिखाएं, लेकिन हम जानते हैं कि ये वास्तविकता नहीं है, इन द सेंस कि ये सच्ची बात नहीं है, तो टेम्पररी चीजें हैं। जो परमानेंट चीज है उसको सिखाना माना उस आत्मा को भी एनलाइटन करना, उसको सच्चा ज्ञान देना। और बच्चे को अगर ये ज्ञान आ जाए तो बड़ा होकर के तो वो तो सच्चा ज्ञानी तो आत्मा बन जाएगा।
बिल्कुल, तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे तक, इनफैक्ट अगर हम बच्चे से बात करें तो हमसे ज्यादा जल्दी उन्हें समझ में आ रही होती है, जैसे आपने कहा।
बिल्कुल
बिल्कुल, ये बात ठीक है। अच्छा, एक और इनका ही सवाल है कि व्हेन आई टॉक टू गॉड आई थिंक आई गेट ओनली दोज आंसर्स विच आई ऑलरेडी नो, आई डू नॉट गेट आंसर्स फ्रॉम परमात्मा इन विच आई एम कंफ्यूज्ड, आंसर्स आर ऑल्सो कंफ्यूजिंग। ये एक और सवाल है इनका। तो ये जो बात कि जब मैं परमात्मा से सवाल पूछता हूँ उसके वही जवाब आते हैं जो मुझे आते हैं जवाब, और जिन सवालों के जवाबों को लेकर मैं कंफ्यूज हूँ वो परमात्मा की तरफ से जो मैं सोचता हूँ वो भी कंफ्यूजन वाले होते हैं।
अब इसमें मैं 2-3 बातें बताना चाहती हूँ। कई लोग ये ऐसे कहते हैं कि हम तो भगवान से बातें करते लेकिन भगवान का जवाब नहीं आता। और दूसरा प्रश्न जैसे इनका, ये आपने कहा कि हम जो बात करते वही जवाब मिलता जो हम जानते हैं। वास्तव में पहली बात है कि भगवान हमें जवाब देता है, ये पहले हमें समझना होगा, ये फेथ रखना होगा। लेकिन अगर परमात्मा से उत्तर जानना चाहते हैं या जवाब लेना चाहते हैं तो उसके लिए पहले परमात्मा क्या चाहता है क्या नहीं चाहता वो भी तो हम समझे। हम कई बार भगवान से ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो भगवान को पसंद भी नहीं है। कभी हमने ये सोचा परमात्मा को क्या पसंद है बातें, तो परमात्मा के साथ क्या बातें न करें ये भी हमें राजयोग सिखाता है। तो हम इसमें 4 बातें बताते, डूज एंड डोंट्स, परमात्मा से क्या बातें करो और क्या नहीं करो। पहली बात कि परमात्मा से कुछ भी इस संसार की भौतिक वस्तु मांगो मत। अधिकतर हम जो भगवान से बातें करते हम कहेंगे भगवान ये दो वो दो, बच्चा दो, मकान दो, नौकरी दो, धन दो, ये दो। अब ये सब बातें हम भगवान से नहीं करते राजयोग में। दूसरी बात, कई कहते मैं ये धन और वस्तु नहीं मांगता हूँ लेकिन शांति दो, शक्ति दो, ये तो हम मांग सकते हैं। तो परमात्मा कहते ये भी मांगने की जरूरत नहीं है,
इसके तो आप अधिकार,
ये तो आप इसके अधिकारी हो। तीसरी चीज क्या मांगते हैं, हर वक्त भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, तो आदि आदि, ये जो क्षमा हम मांगते ही रहते हैं ये भी परमात्मा कहते हैं सारा समय ये मांगो मत। चौथी बात, हम क्या भगवान से मांगते हैं, दूसरे के लिए सजा मांगते हैं,
उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए,
बिल्कुल
उसके साथ नहीं होना चाहिए, उसने मेरे साथ किया,
हे भगवान उसने मुझे मेरी सत्यानाश कर दी है, आप भी उसकी सत्यानाश कर दो। तो जैसे भगवान से हम दूसरे के लिए पनिशमेंट मांगते हैं, अब ये भी बहुत गलत है। तो उसकी बजाय क्या करो, परमात्मा से वस्तु मांगने की बजाय पहले पहले उनको धन्यवाद करो, क्योंकि जो भगवान ने दिया हुआ है वो कोई कम है क्या? उसी का ही तो दिया हुआ है। तो हम अपने आप से पूछे, क्या हम परमात्मा को धन्यवाद भी करते हैं कि शिव बाबा आपने ही ये सब मुझे दिया हुआ है, ये आपकी ही अमानत है, धन्यवाद आपने मुझे इतना पात्र समझा जो मुझे ये संभालने के लिए दिया, ये तो आपकी ही अमानत है। अब ये जब हम भगवान से बातें करेंगे तो परमात्मा का प्यार हमें मिलेगा, हमें महसूस होगा कि परमात्मा ने हमें कितना पात्र समझा है जो हमें ये सब संभालने लिए दिया है। दूसरी बात, गुण मांगने की जरूरत नहीं, उसकी बजाय अधिकार रखो। तीसरी बात, माफी मांगते रहना ये भी कोई श्रेष्ठता नहीं है, तो उसकी बजाय क्या करो, जो भी मैंने भूल की उसकी सच्चाई परमात्मा को बता दो, और बताने के बाद एक संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो कि ये भूल फिर मैं नहीं करूंगा। और चौथी बात, दूसरे के प्रति सजा मांगने की बजाय हम उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखे कि परमात्मा ही उसको बदलेगा पर मैं अपने आप को बदल दूं।
क्योंकि उनके उन्होंने अगर आपके लिए गलत किया है तो उनका कार्मिक अकाउंट तो ऑलरेडी क्रिएट हो गया।
बिल्कुल,
तो वो उनके कर्मों का फल तो उन्हें मिल ही जाएगा। तो वी शुड बी एक्चुअली, अगर हम उनके लिए फॉरगिवनेस मांग सके, फॉरगिवनेस नहीं तो एक शुभ भावना रख सकते,
हम रखे शुभ भावना और परमात्मा के लिए अवश्य ये कहें कि वो उनको भी समझ मिल जाए और इसके आधार से वो बदल जाए और मैं अपने आप को बदल दूं। तो इसीलिए परमात्मा से मांगने की तो कोई बात ही नहीं है।
और जो रिश्ता हम जोड़ने की बात है कि मुझे जो जवाब मिलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है,
अच्छा जवाब हमें कई बार क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हम ही बोले जा रहे हैं, हम ये सोचते भी नहीं कि परमात्मा को भी तो हमें जवाब देना है। तो जब हमारी सोच बंद हो तब तो हमें जवाब मिले। तो ये पॉजिटिव बातें हम परमात्मा से करें और फिर मन को एकदम क्लियर रखें, क्लीन रखें, और उस क्लीन और क्लियर माइंड और इंटेलेक्ट में परमात्मा की आवाज हमें आएगी। और ये नहीं कि जो मैं सोचता हूँ वही आएगी, नहीं, कई बार जो हमने बिल्कुल कभी सोची नहीं थी वो भी बातें आएगी। ये परमात्मा से हमें इंट्यूशन प्राप्त होंगे, ऐसे इंट्यूशन मिलेंगे जो कभी पहले सोचे भी नहीं थे, पर उसके लिए पहले अपने माइंड इंटेलेक्ट को क्लीन एंड क्लियर रखना होगा और कुछ वेट करना होगा कि परमात्मा का हमें उत्तर मिले, हम ही बोले जाएं, ये जरूरी नहीं।
बिल्कुल, ये हमें देखना होगा कि जो हम ये कह रहे हैं कि मेरे अपने ही आंसर्स जो मैं जानता हूँ वो, क्योंकि हम ही तो कभी कभी रुकते रही हैं, थॉट प्रोसेस तो कंटिन्यूस चलता ही जा रहा होता है।
तो ये रुकना होगा तब जवाब आएगा। जैसे हम किसको टेलीफोन करते हैं, अभी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल हो और हम उसका उत्तर चाहते तो हमें तो रुकना होगा, अगर हम ही बोले जा रहे तो हम उनका उत्तर कैसे पाएंगे।
एक और क्वेश्चन मैं यहाँ लेना चाहती हूँ कि कैन वी चेंज अदर आत्मा संस्कार विद आर ओन एफर्ट इफ दैट ह्यूमन बीइंग इज अवे फ्रॉम अस। ये कहना
दिस इज अ वेरी डीप टॉपिक, व्हाट वी कॉल एज सर्विंग टू द माइंड। समझो कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत अशांत है, बहुत परेशान है, या उसको शरीर का बड़ा रोग है, कष्ट है, कोई पीड़ा है, तो हम उस व्यक्ति को यहाँ से सकाश दे सकते हैं, हम उसको सकाश कहते हैं। मन में इतने ऊंच विचार लाएं और उस आत्मा को हम परमात्मा के द्वारा वो शक्ति दे रहे हैं ऐसा अनुभव कर सकते हैं। उसको बहुत दुख है और मैं सुख के संकल्प करके परमात्मा से उसको सुख की अनुभूति करा रहे हैं। ये जिसको हम मनसा सेवा कहते हैं, ये बहुत ऊंची सेवा है। हम कर सकते हैं, किसी आत्मा को हम इस प्रकार से सेवा करके शांति और सुख पहुंचा सकते हैं।
तो वी कैन एक्चुअली ट्राई इट आउट। बहुत सुंदर बात आपने कही शिलू भाई। यहाँ एक और इनका सवाल है कि आई वांट टू नो, कैन आवर मिस्टेक्स अकाउंट बी सेट टू जीरो। क्या जो हमारा गलतियों का जो एक हम साथ लेकर चल रहे हैं कितना बड़ा भंडार, उसे हम उस अकाउंट को जीरो पर ला सकते हैं?
जरूर ला सकते हैं। तभी तो परमात्मा के महावाक्य हैं कि तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। परमात्मा की याद एक अग्नि के समान है, जैसे अग्नि में किचड़ा डालते हैं तो भस्म हो जाता है, तो परमात्मा की याद रूपी अग्नि से हम अपने पापों को भस्म कर सकते हैं। ये परमात्मा ने बहुत अच्छी हमें एक गिफ्ट दी है कि उनकी याद से हम अपने आप को पापों से मुक्त करा सकते हैं।
बिल्कुल, जब हम कहते हैं कि योग लगता है तो वो जो जितनी भी नेगेटिविटी है, जो वो संस्कार जो कि इतने पावरफुल हो चुके हैं ओवर द इयर्स या ओवर द डिफरेंट बर्थ्स, वो बर्न आउट हो जाते हैं।
बिल्कुल हो जाते हैं, और उसका प्रमाण है कि हम इतने लाइट महसूस करते हैं अपने अंदर, हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, औरों के साथ हमारा व्यवहार सुंदर हो जाता है, और हम सबका दिल जल्दी जीत लेते हैं, हमारे जीवन में जो ऑब्स्ट्रक्शंस है वो नहीं आते हैं, जीवन इतना सहज सरल हो जाता है, तो ये हमारे विकर्म पाप खत्म हो रहे हैं, ये अनुभूति होती है।
बिल्कुल, और हर सिचुएशन को हैंडल करने की जो है हमारे पास इंट्यूशन पावर भी आ जाती है
और लाइटनेस इतनी आती है, जैसे जो चीज लाइट होती है माना इट हैज फिनिश्ड ऑल इस नेगेटिविटी, तो हम इतने लाइट बन जाते हैं और हैवीनेस खत्म हो जाती है। दिस प्रूव्स दैट आवर सिनफुल एक्शंस हैव बीन अब्सॉल्वड।
तो ये लास्ट के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपसे लिए शोभा जी ने हमें भेजे थे, आगे बढ़ते हैं मुकुंद जी का। एक्चुअली हमारी कोशिश ये है कि हम जो जनरल सवाल हैं वो ले लें, लेकिन ये एक सवाल इनका पर्सनल है जो इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ता है मुकुंद जी का, इनके बारे में लेते हैं क्योंकि ये कईयों की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये कहते हैं कि मेरी कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेट और मैं फियर से सफर कर रहा हूँ, मुझे डर लगता है, भय है, और टू कोप अप विद दिस आई डिड वन मेडिटेशन कोर्स ऑफ विपासना बट आई डिडंट फाइंड एनी रिजल्ट। एवरी मेडिटेशन रीचेस टू द परमात्मा ये कहा जाता है, बट व्हाट आई हैव टू डू, शुड आई अगेन गो टू साइकोलॉजिस्ट और आई हैव टू फेस व्हाट आई एम सफरिंग, सो प्लीज टेल मी मैं क्या कर सकता हूँ।
पहले तो हमें ये जानना होगा कि किस बात का फियर है उन्हें, क्योंकि कई प्रकार के फियर होते हैं। कई लोगों को तो अंधेरे से भी डर लगता है, किसको कॉकरोच से, चूहे से भी डर लगता है, लेकिन सबसे बड़ा अगर डर है तो वो है मनुष्य मृत्यु से डरता है, ये सबसे बड़ा डर है। तो जैसे मृत्यु का डर उसे सताता है, वास्तव में जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हम महसूस करते हैं मैं तो कभी मरता नहीं, मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ, तो मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं, मैं तो सदा था हूँ और रहूंगा। तो जबकि मैं आत्मा कभी नहीं मरती तो मृत्यु का डर ही नहीं, और जहाँ मृत्यु का डर नहीं तो कोई भी प्रकार का डर नहीं, क्योंकि यही सबसे बड़े से बड़ा डर है। तो राजयोग के माध्यम से हम इस डर से मुक्त हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सब प्रकार के डर से मुक्त हो जाते हैं।
शीरू बहन, कई बार हम जब पिछले अपने प्रोग्राम्स में बात करते आए हैं तो जो भी साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है उसमें भी यही कहा जाता था कि मेडिटेशन हैज अ लॉट। तो इन्होंने जैसे कहा कि क्या मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है या फिर मेडिटेशन के माध्यम से?
मेडिटेशन के माध्यम से हम इस डर को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन जो यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में सिखाई जाती है उसमें हम स्वयं को आत्मा निश्चय करते हैं, और मैं आत्मा अविनाशी हूँ ये निश्चय है तो ऑटोमेटिकली फियर तो खत्म ही हो जाता है।
एक सवाल और श्री बहन यहाँ मैं लेना चाहूंगी कि कैन वी कॉल परमात्मा इंस्टेड ऑफ शिव बाबा शिव माता, ये कि माँ के स्वरूप में अगर हम देख सकते हैं तो हम माता पिता तो कहते ही हैं,
क्यों नहीं। परमात्मा शिव हमारे माता पहले हैं फिर पिता हैं, तो माता पिता के रूप में देखते हैं, लेकिन पिता क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे पिता से अधिकार मिलता है ना, तो परमात्मा से हम आत्मा को अधिकार मिलता है इसलिए हम शिव पिता कहते हैं, परंतु माँ भी क्यों नहीं है।
एक सवाल लिपि चौधरी जी का है कि हु एम आई, आई एम प्योर सुंदर अजर अमर सच्चिदानंद आत्मा, आई एम अंश ऑफ परमात्मा और आई एम संतान ऑफ परमात्मा।
हाँ, इसमें हम कहेंगे कि संतान है, लेकिन अंश क्यों कहा जाता है इसका भी कारण है, क्योंकि परमात्मा के जो गुण हैं और आत्मा के गुण हैं उसमें जो गुणवत्ता है वही है, क्वालिटी इज द सेम, लेकिन क्वांटिटी में आत्मा के गुण परमात्मा के गुण के अंश हैं। जैसे परमात्मा शांति का सागर है तो आत्मा शांत स्वरूप है, परमात्मा प्रेम का सागर है तो आत्मा प्रेम स्वरूप है, तो प्रेम वो गुणवत्ता वही है पर वो स्वरूप है और परमात्मा सागर है,
तो हमने उनके गुणों के अंश लिए हुए हैं।
गुणों के अंश के रूप में है आत्मा, यानी जो भी परमात्मा के गुण है वो आत्मा के भी गुण है। बाकी आत्मा भी अनादि अविनाशी है तो परमात्मा भी अनादि अविनाशी है। अंश का मतलब ये नहीं कि मैं कोई आत्मा परमात्मा का टुकड़ा हूँ।
ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि मैं और अल्टीमेटली मेरा गोल। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने वाली हूँ
कि कई बार क्या ये मान्यता है कि आत्मा जैसे बुदबुदा है, एक बूंद है, और परमात्मा सागर है या ज्योति है, वो बड़ी ज्योति है, ये छोटी ज्योति है, तो ज्योति फिर ज्योति से निकली, ज्योति ज्योति में समा गई, बूंद सागर में समा गया। ये क्यों सिमिलीज दी जाती है? क्योंकि परमात्मा के गुण और आत्मा के गुण में समानता है, पर गुणवत्ता सेम होते हुए भी संख्या में या क्वांटिटी में अंतर है, इसलिए कह दिया कि उसकी बूंद या उसमें से ज्योति, पर इट मीन्स द सेम क्वालिटी। परंतु आत्माओं का भी नाश नहीं होता, परमात्मा का भी नाश नहीं होता। आत्मा अनादि अविनाशी है, परमात्मा अनादि अविनाशी है, सदा ही आत्माएं भी थी और परमात्मा भी है और सदा ही रहेंगी, तो कहाँ से निकली या किस मिल जाएंगी वो तो बात ही नहीं है।
मर्ज होने वाली बात जो है कि मुझे वही समा जाना है,
वो भी नहीं है अविनाश। और संतान क्यों कहते हैं हम आत्मा को परमात्मा की संतान? क्योंकि जैसे बच्चे को अधिकार मिलता है, वैसे परमात्मा से हमें गुणों का अधिकार, स्वर्ग का अधिकार मिलता है। ये पहली बात। दूसरी बात, संतान इसलिए कहते हैं क्योंकि परमात्मा हमको एक नया जन्म देते हैं। हम आत्मा आज इतनी शक्तिहीन हो गई है, विस्मृत हो गई है, भूल गई है अपने आप को, तो वो स्मृति कौन दिलाए, शक्ति फिर से कौन हमें प्राप्त कराइए? परमात्मा का ही कार्य। तो जैसे एक मुर्दे को जिंदा किया जाता है, एक नया जीवन मिलता है, जैसे डॉक्टर किसी मरीज जो बिल्कुल होपलेस हो उसको एक नया जीवन दे दे, तो क्या कहेंगे? हे डॉक्टर साहब, आपने तो उनको नया जन्म दिया। तो नया जन्म या नया जीवन माना जैसे होपलेस केस को होपफुल बना देना। तो परमात्मा भी हम आत्माओं जो होपलेस केस हो चुकी है उनको फिर से होपफुल बनाते, इसीलिए हम उसके बच्चे हैं। वी आर गिवन अ न्यू बर्थ बाय गॉड।
बिल्कुल। और वो जो हम बात कर चुके हैं उस बारे में कि वो कैसे बर्थ हो रहा है, क्योंकि सही पहचान के साथ जो है हम एक नए युग को के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए हम संतान जो
तो हम संतान है उस रूप से।
एक और सवाल, बहुत सारे लोगों के सवाल ही सवाल है शिलु भाई, कि व्हाई गॉड हैज सेंट अस गिविंग बर्थ इन दिस ह्यूमन बीइंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड मृत्यु रोग विच इज फुल ऑफ सोरोज एंड वरीज, व्हाट शुड बी आवर गोल टू टेक दिस बर्थ?
इसमें हम दो बातें बताते हैं कि पहली बात ये है कि हम परमात्मा के घर से आए, अपने घर से आए, कुछ बहुत ऊंचा लक्ष्य लेकर के आए। हम कोई ऐसे ही नहीं आए, परमात्मा ने हमें फेंक दिया हो या ऐसे जबरदस्ती भेज दिया हो, नहीं, बहुत ऊंचे लक्ष्य लेकर के आए। और ये पहली बात। दूसरी बात है कि वास्तव में ये संसार दुख रूप नहीं है, ये संसार बड़ा ही सुख रूप है, परंतु हमने अपने कर्मों से इसे दुख रूप बना दिया है, तो हम समझते ये दुनिया तो बड़ा दुख रूप है। ये ईश्वर की सृष्टि है और वो सुख का सागर है, तो हम उनके बच्चे, उनकी ये सृष्टि रचना, वो भी तो सुख स्वरूप है। तो इसमें हम तीन लक्ष्य बताते क्यों हम इस संसार में आए। पहला लक्ष्य था कि आत्मा जो है वो एक्टर है, तो एक्टर होने के नाते इस सृष्टि मंच पर एक्टिंग करने आए, क्योंकि एक्टर के अंदर एक्टिंग करने की कला होती है, तो वो कला प्रदर्शित करने इस संसार में आए। जैसे एक एक्टर को या किसी भी कलाकार को मंच चाहिए या साधन चाहिए, तो ये सृष्टि रंगमंच या साधन के रूप
माध्यम बनी एक आत्मा
के लिए, परफॉर्म करने लिए माध्यम। और दूसरा है, हम इस संसार में आए जो आत्मा के अंदर गुण निहित है वो गुण बांटने के लिए आए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सोल। आत्मा जैसे ही ये गुण बांटती है मन से, वचन से, कर्म से, उतना ये गुण आत्मा में बढ़ते हैं। तो बांटने से बढ़ते हैं, इसीलिए संसार में आए ताकि हम और बांट सके तो आत्मा में ये बढ़ सके। और तीसरा लक्ष्य था, परमात्मा ने क्यों हमें इस संसार में भेजा? उस ईश्वर का नाम रोशन करने के लिए। We have come here to glorify God. So I have to ask myself, am I doing those actions which are really glorifying God? ये प्रश्न हम अपने आप से पूछे और फिर ये पूछे कि क्या हमारा यह आना सार्थक हुआ? जो लक्ष्य लेकर आए थे वो पूर्ण कर रहे हैं।
तो ये एक बहुत जरूरी बात है। आज की इस पूरी बातचीत में बहुत सी बातें हमारे सामने आई, खासकर ये बात कि परमात्मा से जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ। बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि आपने बताई चार स्टेजेस होती हैं मेडिटेशन में जब हम होते हैं, कि जहाँ अगर हम एक बार रिवाइव कर लें उनको कि कौन सी वो चार स्टेजेस हैं, ताकि और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए।
पहले इनिशिएशन, जिसमें हम अपने आप से बातें करते हैं, फिर मेडिटेशन परमात्मा से बातें करते हैं, फिर कंसंट्रेशन एक एक गुण में हम अपने आप को समाते जाते हैं, और फिर रियलाइजेशन उस गुण का स्वरूप बन जाते हैं।
और वो अनुभव होने, जिन्हें हम तलाश रहे थे, वो अनुभव होने लगते हैं। बहुत सुंदर बात शीरू बहन, आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति।
अगर आज के हम बातें देखें तो सचमुच हम में से हर कोई ट्राई कर रहा है, हर कोई, क्योंकि जब हमें पता चल रहा है कि परमात्मा स्वयं आकर ये ज्ञान दे रहे हैं, परमात्मा स्वयं हमें तलाश रहे हैं, और उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि एक पहला कदम बढ़ाना है, और वो शुरू होता है मेडिटेशन से, योग से। तो हम में से ज्यादातर लोग योग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सवाल जरूर उठ रहे हैं, परमात्मा कौन है? हम सब पहचान गए हैं कि वो पॉइंट ऑफ लाइट, वो सुप्रीम सोल जो कि हमारे परम पिता हैं, उनके साथ अपने रिश्ते को भी समझते हैं, लेकिन जो मेडिटेशन की स्टेजेस आज हमने समझी हैं शीरू बहन से, उनमें खुद को देखें कि हम किस स्टेज पर हैं, तो उस स्टेज से अपने आप को हायर स्टेज पर ले जाने का प्रयास भी करें, और साथ ही जिस स्टेज में हम हैं उसे भी स्वीकारते जाएं।
ओम शांति।